अब आपका नेक्स्ट वन टू वन टॉक सेशन टू रहेगा, जिसका विषय है प्रमोटिंग एथिकल एंड रिस्पॉन्सिबल जर्नलिज्म, नैतिक और जिम्मेवार पत्रकारिता को प्रोत्साहित करना, जिसके लिए मैं आमंत्रित करना चाहूंगी हमारी आदरणीय ब्रह्मा कुमारी बहन बी के ज्योति, नोएडा टीवी जर्नलिस्ट, और हमारे गेस्ट ऑफ ऑनर प्रोफेसर डॉक्टर संजय द्विवेदी जी।
शांति। तो आज हमारे साथ हमारे विशेष अतिथि प्रोफेसर संजय द्विवेदी जी हैं। आपका संक्षिप्त परिचय देना चाहूंगी। वर्तमान में आप माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय भोपाल में विभागाध्यक्ष और प्रोफेसर का पद संभाल रहे हैं। पूर्व में भी आप IIMC के महानिदेशक, दिल्ली भारतीय जन संस्थान के महानिदेशक रह चुके हैं। आप एक प्रख्यात पत्रकार, संपादक, स्तंभकार और लेखक भी हैं, और 15 वर्ष से अधिक आपका पत्रकारिता में भी अनुभव है। कई अखबारों और टीवी से जुड़े रहे हैं। 3000 से अधिक लेख प्रकाशित हुए हैं और 32 पुस्तकों का लेखन भी आप मीडिया क्षेत्र में कर चुके हैं। कई पुरस्कारों से भी भाई साहब को नवाजा गया है, और खास बात इससे भी बढ़िया भाई साहब का परिचय है कि 2009 से वो ब्रह्मा कुमारी संस्थान से जुड़े हुए हैं, और जो हमारी मीडिया विंग है जिसमें पत्रकारिता को सुधार के लिए जो भी कार्यक्रम चलते हैं, भाई साहब पूरे देश में जहां जहां कार्यक्रम होते हैं हमारे साथ मिलकर इस कार्य में, परमात्मा के कार्य में और समाज के सुधार में सहयोग करते रहते हैं। तो सभी लोग एक बार फिर से भाई साहब का तालियों से स्वागत करेंगे। आज के वन टू वन टॉक का विषय है नैतिक और जिम्मेदार पत्रकारिता को प्रोत्साहित करना, एथिकल और रिस्पॉन्सिबल पत्रकारिता को हम कैसे प्रमोट करें। तो भाई साहब नमस्कार, और आपसे मेरा
शांति।
जी ओम शांति। आपसे मेरा पहला क्वेश्चन है कि पत्रकारिता का जो मूल उद्देश्य है उसमें हम नैतिक पत्रकारिता की आज आवश्यकता क्यों पड़ रही है, जबकि हम ये कहते हैं जब हम अपने आप को पत्रकार कहते हैं तो इसका मेन यही है कि हम जिम्मेदार हैं।
देखिए, किसी भी समाज को अगर चलाना है और सुव्यवस्थित तरीके से चलाना है, क्योंकि समाज की अपनी गति होती है, हम नहीं चलाएंगे तो भी चलेगा, हम नहीं करेंगे तो भी चलेगा, हर दिन नया सूरज उगेगा, तो हमें कुछ नीति नियंत्रण नैतिकताएं स्वयं ही अर्जित करनी पड़ती हैं। हर समाज की अपनी नैतिकता होती है, हर समाज के अपने मूल्य होते हैं, और उन मूल्यों पर जब हम चलते हैं तो हमें मानते हैं समाज नैतिक उत्थान समाज का हो रहा है और समाज सब क्षेत्रों में प्रगति कर रहा है। ये क्योंकि पत्रकारिता का डिस्कोर्स है, ये पूरे समाज के लिए मूल्य आवश्यक है, पूरे समाज के लिए नैतिकता आवश्यक है, और पत्रकारिता का स्थिति आवश्यक है, क्योंकि पत्रकारिता के जो विचार हैं वो सिर्फ पत्रकारों को प्रभावित नहीं करते बल्कि पत्रकारों के विचार से सारा समाज प्रभावित होता है। इसलिए हमारी जिम्मेदारी बाकी क्षेत्रों से ज्यादा है, क्योंकि हम जो लिखेंगे, हम जो पढ़ेंगे, हम जो कहेंगे, उससे सारा समाज प्रभावित होता है। इसलिए हमारी जिम्मेदारी बाकी लोगों की तुलना में कुछ ज्यादा है।
अगर हम जिम्मेदार पत्रकारिता की बात करते हैं तो ऐसे कौन से मानक होंगे जिससे हम कहें कि हम जिम्मेदार पत्रकारिता को, हम जिम्मेदार पत्रकार हैं या जिम्मेदार पत्रकारिता कर रहे हैं?
देखिए, दो ही शब्द हैं हमारे पास, एक तो है राष्ट्रहित, दूसरा है जनहित। जनहित और राष्ट्रहित अलग अलग नहीं है। जब हम अपने देश के लोगों का विचार करते हैं, देश कैसे बनता है, देश का मतलब ये थोड़ी कि जमीन बहुत सारी हमारी है, देश से भूगोल नहीं है, देश अपने आप में उस जमीन पर रहने वाले लोगों की खुशहाली, उस देश के लोगों के रहने वाला जो वहां रह रहे हैं उस जमीन पे लोग, उनका आनंद, उनके दुख दूर हो, वो सुखी हो, संपन्न हो, आनंद के साथ और जीवन व्यतीत करें, सबको समान अवसर हो, तो कुल मिलाकर जो हमारी कसौटी है कसने की कि हम सही रास्ते पर गलत रास्ते पर हैं, हमें देखें कि हमारा जो काम है उससे देश का हित हो रहा है कि नहीं हो रहा है, और देश हित के बहाने समाज का हित हो रहा है कि नहीं हो रहा है। अगर कोई भी चीज लोक मंगल में है, किसी हमारे किसी कार्य से लोक मंगल होता है, पत्रकारिता का एक ही उद्देश्य है, साहित्य, पत्रकारिता, प्रदर्शन कलाएं, जितने हमारे परफॉर्मिंग आर्ट्स हैं, इन सबका उद्देश्य लोक मंगल और लोक रंजन, लोगों को आनंद प्राप्त हो, लोगों को सुख प्राप्त हो, लोगों को सही दिशा प्राप्त हो। अगर हमारे लेखन से, हमारे विचारों से, हमारे प्रदर्शन से समाज को सुख प्राप्त हो रहा है, समाज को एक नई सुंदर दिशा मिल रही है, तो मुझे लगता है यही उसकी कसौटी है कि इसमें लोक मंगल का तत्व कितना है। अगर लोक मंगल नहीं है, केवल लोक रंजन है तो भी ठीक नहीं है, लोक रंजन तो हो किंतु लोक मंगल भी होना चाहिए, लोगों कल्याण हो, सुमंगल हो, सबका कल्याण हो। हम कहते हैं सर्वे भवन सुखिना, सर्वे संत निरामया, सर्वे भद्राण पश्यन्तु मा कश्चित् दुर्भाग् भवेत्, तो कसौटी अलग नहीं है, जो समाज की कसौटी है वही पत्रकारिता कसौटी है।
बिल्कुल सही कहा आपने कि सभी का मंगल हो और सभी समाज के सभी समुदायों को बराबरी का हक मिले, ऐसी पत्रकारिता ही जिम्मेदार पत्रकारिता कहलाएगी। फिर आज जैसे डिजिटल युग है, तो डिजिटल युग में जो है हम एथिकल जर्नलिज्म की अगर हम बात करें तो कितना प्रासंगिकता इसकी है या क्या किस तरह से ये बदली है?
देखिए, क्योंकि डिजिटल जो वर्ड है उसके एक नियंत्रण के हमारे पास कोई उपाय नहीं है, बात सही है, क्योंकि एक व्यक्ति अपनी सनक पर अपने शौक से अपने विचार व्यक्त कर रहा है, जबकि जब हम परंपरागत जो मीडिया है, ट्रेडिशनल मीडिया जिसको हम कहते हैं, उसको हम देखते हैं तो वहां संपादक नाम की एक संस्था है जो क्या जा रहा है उसके बारे में देखती है। तो चीजें परंपरागत मीडिया में, टेलीविजन में, रेडियो में, अखबारों में प्रोसेस होकर जाया करती थी, एक प्रोसेसिंग की परंपरा है कि सीधा हम नहीं खिला देते, हम उस जो भी उत्पाद है, जो भी खबर है, वो प्रोसेस होकर जाती है। डिजिटल मीडिया आने के बाद समस्या ये हुई, प्रोसेसिंग की परंपरा ही समाप्त हो गई। जैसे जगीरा डाकू चाइना गेट फिल्म में कहता, मेरे मन को भाया, मैंने कुत्ता काट के खाया। अरे भाई, तेरे मन को नहीं भाना, समाज के मन को भाना, उससे लोक मंगल भी होना, लोक कल्याण भी होना। तो डिजिटल मीडिया जो है प्राय जो व्यक्तिगत रूप से जो उनका संचालन कर रहे हैं वो उनका शौक, उनकी रुचि, उनका जो विचार है वो उसको लेके चलते हैं, बहुत वो लोक मंगल का, राष्ट्रहित का, नियमों का बहुत पालन नहीं करते, और क्योंकि नियंत्रण की कोई विधि नहीं है, क्योंकि यहां पर संपादक है ही नहीं, जब संपादक अनुपस्थित है तो जो कुछ जैसा है वैसा जाएगा, तो ये जो कुछ जैसा का वैसा जाता है तो समस्याएं खड़ी होती हैं। और हमें इसलिए कुछ ना कुछ संपादक का होने का मतलब एक आचार संहिता का होना है, संपादक होने का मतलब एक जिम्मेदारी का होना है कि संपादक का दायित्व होता है कि अपने जो रिपोर्टर्स हैं या उनके नीचे काम करने लोग हैं उनको बार बार उनकी हदें और सरहदें याद दिलाते हैं। जब अपनी हदें और सरहदें भूल जाते हैं, अपनी सीमाओं का अतिक्रमण करते हैं, अपनी लक्ष्मण रेखा का उल्लंघन करते हैं तो गड़बड़ तो होती है, और इस नाते गड़बड़ इसीलिए हो रही है कि हम कहीं न कहीं अपनी लक्ष्मण रेखा का उल्लंघन करते हैं। आपने देखा कि माँ सीता ने लक्ष्मण रेखा का उल्लंघन किया, कितना बड़ा युद्ध हुआ, कितना बड़ा संघर्ष उनके जीवन में उपस्थित हुआ। इसलिए जब भी हम लक्ष्मण रेखा का उल्लंघन करेंगे तो हम संकट में पड़ेंगे, और कई बार हमसे ऐसी चूक हो रही है तो हम देख रहे हैं लाखों लाख करोड़ों करोड़ों फॉलोअर हैं और अचानक वो किसी मामले में फंस जाते हैं, फिर उनका चैनल यूट्यूब सारा कुछ समाप्त हो जाता है। अनेक ऐसे उदाहरण हमारे सामने भी आए हाल के दिनों में कि उनको जेल यात्राएं भी करनी पड़ी। तो कहीं ना कहीं हमें अपने सार्वजनिक संवाद में शुचिता को बना के रखना है कि सार्वजनिक संवाद है, लोगों के बीच में चीज जा रही है, क्या जा रही है, समाज इससे क्या सीखेगा, ये कहीं ना कहीं हमको देखना पड़ेगा। उसमें अगर हम असफल होते हैं तो हम अपने लिए खुद संकट पैदा करेंगे।
जी बिल्कुल, जैसा आपने कहा कि संपादक मतलब ही जिम्मेदारी है, तो जैसे ही हम अपने आप को पत्रकार कहते हैं, चाहे हम डिजिटल पत्रकार कहें या प्रिंट या इलेक्ट्रॉनिक, तो जिम्मेदारी का ताज हमारे सर पर होता है और बेहद की रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारे ऊपर हो जाती है। आपसे एक और क्वेश्चन जाना है कि अगर पत्रकार की कोई व्यक्तिगत सोच या विचारधारा है, जैसे कि अभी आपने कहा, तो रिपोर्टिंग को वो किस तरीके से प्रभावित करती है या मास मीडिया को कैसे प्रभावित करती है?
देखिए, हमारे समय के बहुत बड़े पत्रकार हुए मान्य प्रभास जोशी जी, मानसिंह परमार सर तो जानते ही हैं, इंदौर के रहने वाले थे, वो बहुत बड़ी बात कहते थे। वो कहते थे कि विचारधारा होना बुरी बात नहीं है, सबकी कोई ना कोई विचारधारा है, और एक मनुष्य जो है तटस्थ नहीं रह सकता, वो कोई ना कोई विचार लेके आता ही है, और या किसी न किसी पॉलिटिकल आइडियोलॉजी को ज्वाइन करता है। तो विचारधारा होनी बुरी बात नहीं, क्योंकि हम सब मतदाता भी किसी न किसी दल को वोट करते होंगे। वो ये कहते थे कि पत्रकार की पॉलिटिकल लाइन होने में बुराई नहीं है, अगर पॉलिटिकल लाइन है बहुत अच्छी बात है। समाज के लिए आपका सपना क्या है, आप समाज को कैसा देखना चाहते हैं, देश की आर्थिक नीतियां क्या होंगी, देश की सुरक्षा की नीतियां क्या होंगी, देश की सामाजिक नीतियों के बारे में आपकी क्या राय है। तो विचारधारा एक ड्राइविंग फोर्स है जो हमें एक सुंदर समाज बनाने के लिए प्रेरित करती है। और वो कहते थे पॉलिटिकल लाइन तो ठीक है पर पार्टी लाइन नहीं होनी चाहिए, यानी पत्रकार को दलगत राजनीति से ऊपर होना चाहिए। आज क्या है कि हम भूल जाते हैं कि हम पॉलिटिकल लाइन के साथ साथ पार्टी लाइन को फॉलो करना शुरू कर देते हैं। पार्टी लाइन पर जो व्यक्ति चलता है वो एक विचारधारा का, एक किसी दल विशेष का गुलाम होता है। तो पत्रकार किसी दल का गुलाम नहीं हो सकता, पत्रकार को हमेशा दलगत राजनीति से ऊपर होना है। वो ठीक है राजनीति कवर करता है, वो विचारों से प्रभावित हो सकता है, अच्छी बात है, किसी अच्छे काम से प्रभावित हो जाना कोई बुरी बात नहीं है। हम सब भी अपने पुराने राष्ट्र नेताओं को याद करते हैं जो किसी न किसी दल में ही थे, पंडित नेहरू हो, सरदार पटेल हो, लाल बहादुर शास्त्री हो, अटल बिहारी वाजपेयी हो, आज नरेंद्र मोदी हो, सब किसी किसी को पसंद करते होंगे। पर दलीय राजनीति एक अलग है, पत्रकार को हमेशा राष्ट्रीय राजनीति करनी चाहिए, जो राष्ट्रहित में है, जो जन जनहित में है, लोक मंगलकारी है, उन सारे विषयों में हम साथ होंगे और दलगत राजनीति से ऊपर उठकर विचार करेंगे। जब आप दलगत राजनीति करते हैं तो अच्छा बुरा कुछ नहीं होता, जो पार्टी कर रही है, जो सरकार कर रही है, सब ठीक है। कोई भी नेता सब अच्छा नहीं करता, कोई भी सरकार सब अच्छा नहीं करती, कुछ अच्छा करती, कुछ बुरा भी करती है, और कुछ ग्रे एरिया भी होता है। जिंदगी में सिर्फ ब्लैक एंड व्हाइट नहीं होते, ग्रे एरियाज भी होते हैं जहां पर आपको विचार करना पड़ता है कि इस पर हम क्या राय लें। तो जब हम विचार करें तो मैंने पहले भी आपसे कसौटी हमारी क्या है, राष्ट्रहित लोक मंगल, राष्ट्रहित और लोक मंगलकारी अगर निर्णय है तो उस निर्णय के हम साथ खड़े होंगे, और पत्रकारिता को भी साथ देना चाहिए। इस राष्ट्र के निर्माण में पत्रकारिता का बहुत बड़ा योगदान है। हम देश का शायद दुनिया का शायद अकेला मुल्क है जिसने आजादी की लड़ाई पत्रकारिता के कंधों पर लड़ी है, हमारे सारे राष्ट्रनायक पत्रकार थे। तो इसलिए आज राष्ट्र के नवनिर्माण का समय आया है, एक नए भारत के निर्माण का समय आया है। अगर आजादी की लड़ाई में हमने योगदान दिया अपनी कलम से तो आज राष्ट्र के निर्माण में भी हमारा योगदान होगा और इसको हम संभव करेंगे।
तो जैसा कि सर ने कहा कि पत्रकार को बायस नहीं होना चाहिए, तो आपसे एक और है कि खासकर युवा पत्रकार जो हैं, उन्हें हम जिम्मेदार या नैतिक पत्रकारिता के लिए किन मूल्यों को वो अपनाएं?
देखिए, मेरा मानना है कि आप जो कह रहे हैं और जो आप लिख रहे हैं उसकी आपको जिम्मेदारी लेनी चाहिए। भावावेश में जो लेखन होता है वो ठीक नहीं होता है। एक पत्रकार की जिम्मेदारी बहुत बड़ी है क्योंकि वो सार्वजनिक संवाद कर रहा है, वो दो लोगों के बीच का संवाद नहीं। हम आज दो बैठे हैं पर हम सार्वजनिक संवाद कर रहे हैं, सब लोग इस चर्चा में शामिल हैं, इसका प्रसारण भी हो रहा है, ये सार्वजनिक संवाद है। हम दो बात कर रहे हैं किसी कक्ष में बैठ करके अलग से बात कर रहे हैं, उसमें ठीक है हम थोड़ी फ्रीडम ले सकते हैं, पर जब सार्वजनिक संवाद में जाते हैं, हमारा संवाद सार्वजनिक जीवन में जा रहा है और हमारे संवाद को लोग सुन रहे हैं, हमें बहुत जिम्मेदार होना पड़ेगा। एक एक शब्द का चयन, एक एक वाक्य का चयन, और जो हम संदर्भ दे रहे हैं, जिन संदर्भों का हम इस्तेमाल कर रहे हैं, उनका बहुत हमें सतर्क इस्तेमाल करना होगा। आज समस्या क्या है, हमारा अध्ययन का समय बहुत कम हो गया, जैसा अभी डॉक्टर परमार कह रहे थे कि अध्ययन का समय कम हो गया। अध्ययन न होने के नाते आज समस्या है कि हम पढ़ते नहीं और जो दिखा उस पर तत्काल टिप्पणी करते हैं। जैसे हम योग राजयोग में जाते हैं, तो जब हम राजयोग में जाते हैं तो तुरंत प्रतिक्रिया से बचते हैं। आज की पत्रकारिता की समस्या क्या है, तुरंत प्रतिक्रिया करने की जल्दी है, और आप जानिए कि जब भी हड़बड़ी होगी तो गड़बड़ी होगी, हड़बड़ी में गड़बड़ी होना तय है, थोड़ा ठहर जाइए। जैसे भी बरमार सर बोल रहे थे, बड़ा सुंदर बात के बड़ी सुंदर बात कह रहे थे, अचानक जो है सब लोग ध्यान में चले गए। वो जो ठहर जाना है, किसी घटना के बाद रुक जाना है और उस पर विचार करना है, वो दो पांच मिनट का जो मौन है पूरे दृश्य को बदल देता है, पूरे दृश्य को बदल देता है। क्योंकि एक घटना पर जो तात्कालिक प्रतिक्रिया वो अलग होगी, ठहर कर पांच मिनट दस मिनट या एक घंटे बाद दी गई प्रतिक्रिया बिल्कुल अलग होगी। तो युवाओं के साथ मेरा कहना है कि संयम के साथ ठहर जाएं, थोड़ा विचार कर लें, इस संदेश का क्या प्रभाव होने वाला है, इस वीडियो का समाज पर क्या प्रभाव होने वाला है, ये जो मैं बोल रहा हूं ये किसके लिए बोल रहा हूं। अगर वो ठहर करके थोड़ा इंतजार करके चीज को करेंगे तो मुझे लगता है कि बिल्कुल प्रतिक्रिया अंतर होगा और उनका जो संवाद होगा वो सकारात्मक होगा, लोक मंगलकारी भी होगा और स्वीकार्य भी होगा।
बिल्कुल, क्योंकि वो सोच समझकर फिर अपनी बात को लिखेंगे कहेंगे। तो एक क्वेश्चन आपसे ये भी है कि अगर जिम्मेदारी पत्रकारिता को हम प्रोत्साहित करना चाहते हैं तो वो कैसे करें हम, क्योंकि जनता की भी भूमिका है नैतिक पत्रकारिता को प्रोत्साहित करने में।
देखिए, निश्चित रूप से ये बात बार बार कही जाती है कि जैसा समाज होगा वैसी पत्रकारिता होगी, वैसी राजनीति होगी, वैसा ही चिकित्सा क्षेत्र होगा, वैसे ही शिक्षक होंगे। पर मेरा कहना है ये चोर गली है, अपने पाप को ढकने का प्रयास है। समाज का अधोपतन हो रहा तो हमारा पतन होने की गारंटी कैसे हो जाएगी। जैसे आप आजकल टीवी डिबेट्स में देखते होंगे कि पॉलिटिकल लीडर्स कहते हैं कि आपके टाइम में ऐसा हुआ, आपके टाइम में ऐसा, आपने भी तो ऐसा किया। अरे भाई, हमने ऐसा किया इसलिए अपोजिशन में चले गए, आप क्यों कर रहे हो, हमने बुरा किया तो हमारी तो जनतन जगह दिखा दी हमको। तो ये कहना कि क्योंकि समाज का पतन हो रहा है इसलिए मैं भी पतित हो जाऊंगा, ठीक नहीं है, ये चोर दरवाजा है, मुझे ये अच्छा दरवाजा नहीं लगता। ये अपने आप को बचाना है तो ये सारे समाज का पतन हो रहा है इसलिए मैं भ्रष्ट हूं, डॉक्टर भी इसीलिए गिर गए, सब गिर गए साहब, हम कैसे बच जाएं, ये ठीक नहीं है। समाज का अधोपतन हो रहा है, उसको रोकने वाले भी कुछ लोग तो होंगे। समाज तो बहुत पतित हो गया था, पर उसी आंदोलन में, उसी गुलाम देश में एक व्यक्ति आता है जिसका नाम सुभाष चंद्र बोस है, जो आईएएस की परीक्षा ठुकरा देता है, सरकारी नौकरी सर्वश्रेष्ठ सेवा थी, ठुकरा देता है और कहता है कि नहीं, हम अपने मुल्क के लिए इस देश को आजाद कराएंगे। उसी में बैरिस्टर की पढ़ाई करके महात्मा गांधी भी आते हैं, उसी में पंडित जवाहरलाल नेहरू भी आते हैं, उसी में पटेल भी आते हैं। आप राष्ट्रीय आंदोलन नेताओं को देखिए, उनके पास तो विकल्प था कि वो अच्छा भला बैरिस्टर पढ़ के आए थे, अंग्रेजों के साथ मिल जाते, उनके मुकदमे लड़ते रहते, अच्छा जीवन जीते, पर सबने सालों साल जेलें काटी, संघर्ष किया और अंत में देश को आजाद कराया। उस आजादी के आंदोलन की पहली लाइन के पंक्ति के सिपाहियों को देखिए, ज्यादातर बहुत पढ़े लिखे, इतनी पढ़ाई लिखाई, इतनी डिग्रियां लेके लोग लौटे हुए हैं, पर सबने अपनी जिंदगी इस मुल्क के लिए फना कर दी। तो ये भी है कि हम ये दरवाजा खोजें कि साहब समाज पतित हो रहा है इसलिए मेरे भी पतित होने की जिम्मेदारी मेरी है, नहीं, हमें बचाना है ना समाज को। हम अपने को अगर पत्रकार कहते हैं, अपने को साहित्यकार कहते हैं, अपने को रचनाकार कहते हैं, तो हमारी तो जिम्मेदारी है, हम तो गिरते हुए समाज को संभालने की जिम्मेदारी हमारी है। समाज का मत परिवर्तन मेरी जिम्मेदारी क्या है, मैं पत्रकार होने के नाते, लेखक होने के नाते, मैं ओपिनियन मेकर भी हूं, मैं समाज का मत और मन बदल सकता हूं, ये ताकत मेरी कलम के अंदर है, ये ताकत मेरी फिल्मों और मेरे वीडियोस में है, ये ताकत मेरे संदेश में है। तो मैं समाज को बदलने का प्रयास करूंगा या समाज की धारा के साथ बह जाऊंगा, या मेरा विकल्प है, ये मेरा चयन है। मैंने कल अपने वक्तव्य में कहा था कि आपको ट्रेंड के साथ चलना है, ट्रेंड सेटर बनना है या ट्रेंड रिफॉर्मर बनना है। हमें रिफॉर्मर बनना है, हम सुधार करने के लिए आए हुए लोग हैं, हम दूसरे काम भी कर सकते थे, हम दूसरे काम करके ज्यादा अच्छा जीवन जी सकते थे अगर हमने ये संघर्ष का मार्ग चुना है। कई मित्र बोलते हैं मन से बड़ी आसानी से आके पत्रकारिता कल मिशन थी आज प्रोफेशन हो गई, पत्रकारिता मिशन है, मिशन थी, मिशन रहेगी, बेकार की बातें क्यों करते हो। क्यों इस बार की बातें करते हो? अपने अपने धंधे को अपनी गला इतनी गंदी नजर से क्यों देखते हो? जिस व्यवसाय में आप हैं उसको पूजा के भाव से देखिए, हर चीज मिशन ध्यान रखिए। मैं डॉक्टर हूं, एमबीबीएस हूं, 10 रुपए लेकर के 100 मरीजों को देखता हूं, यह मेरा मिशन है। मिशन है, बिल्कुल मिशन है। और मैं डॉक्टर हूं, 1000 रुपए लेकर सुबह 10 मरीज देखता हूं, शाम को 10 मरीज देखता हूं, यह मेरा प्रोफेशन है। यह हमारा चयन है कि हमने अपने काम को मिशन बनाया, प्रोफेशन बनाया है। हर जगह मिशन जिंदा है, हर जगह प्रोफेशन भी जिंदा है। यह आपका चयन है कि आपने मिशन का रास्ता पकड़ा है, आपने प्रोफेशन का रास्ता पकड़ा है। तो हम ये मानते जो इस सभा में उपस्थित लोग हैं, हम पत्रकार हैं, मिशनरी जर्नलिस्ट हैं। हमारा मिशन है समाज में बदल लाने का। हमारा सपना एक अच्छा समाज बनाने का, हमारा सपना एक सुखी सुंदर श्रेष्ठ समाज बनाने का, समृद्ध समाज बनाने का। इसलिए पत्रकारिता में आए, हम कोई दूसरा व्यवसाय कर सकते थे। ऐसे दूसरे व्यवसाय में भी है। मैं एक शिक्षक हूं, क्लास में नहीं पढ़ाता पर ट्यूशन पढ़ाता हूं, ये मेरा प्रोफेशन है। पर मैं क्लास में ही पढ़ाता हूं और मुफ्त में बच्चों को ट्यूशन पढ़ाता हूं, दिस इज माय मिशन। मैं कर सकता हूं, हर व्यवसाय में लोग ऐसा कर सकते हैं और लोग हैं। दुनिया अभी तक अगर टिकी हुई है और आज भी हम सतयुग की प्रतीक्षा कर रहे हैं, इन्हीं लोगों के भरोसे कर रहे हैं जो ट्यूशन नहीं पढ़ाते, मुफ्त में बच्चों को पढ़ाते हैं, जो कम फीस लेके सबका इलाज करते हैं, जो कम पैसे में काम करते हैं और ज्यादा परिणाम देते हैं। यह हमारा आपका चयन है। ये देखिए, उस समय भी लोग थे, उस समय भी आप देखिए, टाइम्स ऑफ इंडिया था, अंग्रेजों के हाथ में था, अंग्रेज एडिटर था। पर टाइम्स ऑफ इंडिया आजादी पहले क्या कर रहा था, हम उसका जिक्र नहीं करते। हम जिक्र करते हैं गांधी जी के अखबारों का, हम जिक्र करते हैं माखनलाल चतुर्वेदी के अखबारों का, हम जिक्र करते हैं माधवराव सप्रे के अखबार का, हम जिक्र करते हैं गणेश शंकर विद्यार्थी के अखबार का। हम उन अखबारों का जिक्र क्यों नहीं करते जो उस समय भी लाखों लाख बिका करते थे? उनका जिक्र ही नहीं होता साहब, जिक्र नहीं होता, क्योंकि प्रसार बढ़ा रहा होगा, धंधा बहुत बड़ा रहा होगा, पर मिशन जिनके साथ था जिक्र उन्हीं का हो रहा है। इसलिए अगर आपको जिक्र करवाना है, जिसे अकबर इलाहाबादी कहते हैं, उनका उनका एक शेर है कि दर्द को दिल में जगह दो अकबर, दर्द को दिल में जगह दो अकबर, इल्म से शायरी नहीं होती। बड़ी अच्छी भाषा है, बहुत अच्छे आप योग्य व्यक्ति हैं, बड़ी अच्छी डिग्रियां लेकर के आए हैं, आप अच्छी पत्रकारिता कर सकते हैं। पर अगर दर्द नहीं है समाज के लिए तो उस पत्रकारिता का कोई मूल्य नहीं, ठहरेगी नहीं समाज में। ध्यान रखिए, ठहरेगी नहीं, हमारे शब्द ठहरेंगे नहीं। शब्द ठहरते तब है समाज में जब उसके साथ हमारी तपस्या जुड़ी होती है। गांधी के शब्द इसलिए ठहरे, वो भी बड़े महान वक्ता नहीं थे, आप सुनिए आप बोर हो जाएंगे, बड़े महान वक्ता नहीं थे, पर जो बोलते थे दिल से बोलते थे, कहते थे मेरे को मत देखो मैं क्या लिखता हूं क्या करता हूं, मेरा जीवन ही संदेश है। जब आपका जीवन संदेश बन जाता है, आपके शब्द समाज में ठहर जाते हैं। और जो वाचाल लोग हैं वो उस समय तक तो दृश्य में रहते हैं, पर अपने समय के बाद वो समाप्त हो जाते हैं। तो मंच पर आकर मनोरंजन करना, मीडिया में रहकर मनोरंजन करना, या मीडिया में रहकर समाज का निर्माण करना, उसको शुभ संदेश देना, ये हमारी अपनी हमारा अपना चयन है। मैं ये नहीं कहता जो लोग ये काम कर रहे हैं इंटरटेनमेंट का वो गलत कर रहे हैं, वो भी अपना काम कर रहे हैं, पर हम अपना काम करेंगे। हम ये मानते हैं कि पत्रकारिता मिशन थी, पत्रकारिता मिशन है, पत्रकारिता मिशन रहेगी। और जो मिशनरी लोग हैं वही कल जिंदा रहेंगे, उन्हीं का कल उल्लेख भी होगा।
तो जो त्याग करेगा उसको भाग्य मिलेगा, ये बाबा भी कहते हैं। और जो भाव और भावनाएं, जैसी हमारी भाव और भावनाएं होती हैं, उसका समाज पर बहुत असर होता है। आपसे एक और क्वेश्चन है कि मीडिया संस्थानों की जो आंतरिक नीतियां होती हैं, वो नैतिक पत्रकारिता को कैसे प्रभावित करती हैं, उनकी इंटरनल पॉलिसीज जो हैं?
मेरा मानना है कि कोई मीडिया हाउस ये नहीं चाहता कि वो समाज के अंदर लांछित हो जाए, बदनाम हो जाए और उसकी विश्वसनीयता खराब हो जाए। मीडिया चलता ही है क्रेडिबिलिटी से, सिर्फ और सिर्फ क्रेडिबिलिटी मीडिया को लोकप्रिय बनाती है, स्थायी रखती है। इसलिए निरंतर क्रेडिबिलिटी को बनाने के लिए हम प्रयास करते हैं। क्रेडिबिलिटी का आशय यह है कि आपने जो लिखा है उस पर लोगों का भरोसा है, आप जो कह रहे हैं उस पर लोग विश्वास कर पाए। आज हालात क्या है? आज हालात ये हैं कि खिड़कियां 8 खुलती हैं शाम को टेलीविजन पे, सामने लिखा हुआ राजनीतिक विश्लेषक, लिखा हुआ वरिष्ठ पत्रकार, आप म्यूट कर दीजिए चैनल्स को, मैं बताऊंगा ये क्या बोल रहे हैं, मैं बताऊंगा। मैं ज्योतिषी नहीं हूं पर मैं उनके लिप्स देख के बता दूंगा साहब क्या बोल रहे हैं, क्योंकि पता है कि ये आदमी यही बोलेगा, इस विषय पर इसकी राय यह है। ये पत्रकारिता का संकट है। अपने सीने पर वरिष्ठ पत्रकार लिखकर, अपने सीने पर राजनीतिक विश्लेषक लिख करके पार्टियों की प्रवक्ताओं को शर्मिंदा मत कीजिए। आज पार्टी का प्रवक्ता सोचता मैं क्या बोलूं, तो साहब पहले ही बोल चुके। आप पार्टी के प्रवक्ताओं को इतना कमजोर समझते हो, अपनी पैर भी नहीं कर सकते। अरे बड़े योग्य लोग वो भी हैं, उनको भी अपना काम करने दीजिए, आप अपना काम कीजिए, आप सत्य के पक्ष में रहिए, गुण गुण दोष सहित व्याख्या करिए। और ये जब हम जिम्मेदारी समाप्त कर देते हैं, जो मैंने कहा पार्टी लाइन पॉलिटिकल लाइन, कई बार हम समझ ही नहीं पाते कि हमारी भूमिका क्या है, आसक्त हो जाते हैं किसी विचार के प्रति, किसी विचारधारा के प्रति, और इसलिए पत्रकारिता क्रेडिबिलिटी गिर रही है। इसमें मीडिया हाउस कुछ नहीं कर सकता है, ये भी हमारा चयन है। मेरे को अगर अपने को भक्त कहलाने का शौक है किसी का भी, तो कोई क्या कर सकता है। आज मीडिया हाउसों के सामने संकट है कि ऐसे जो तटस्थ चेहरे हैं, ऐसे चेहरे जिनके बारे में, जिन पर समाज भरोसा कर सके, ऐसे लोग कम हो रहे हैं, ऐसी आदर्श की स्थितियां कमजोर होती जा रही हैं। और मेरा ऐसा मानना है कि धीरे 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 जिस तरह से आज प्रिंट मीडिया पर लोगों का थोड़ा भरोसा कायम है, पर आप देखिए कि डिजिटल लाखों करोड़ों लोग फॉलोअर होंगे पर भरोसा नहीं है। आपको लोग मनोरंजन के लिए देख रहे हैं, आनंद प्राप्त करने के लिए देख रहे हैं, या आपसे संदेश ग्रहण कर रहे हैं, हमें देखना पड़ेगा। कई बार हमें लगता है कि हम जो बता रहे हैं समाज उसको जस का तस स्वीकार कर रहा, समाज हमसे ज्यादा स्मार्ट है, हमसे ज्यादा होशियार, और जानता है मैं किस बात को किस लिए कह रहा हूं और कहां से बोल रहा हूं और मेरा क्या है, कहां की कोर दबी हुई है। तो इसलिए हमें अपने को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हम सत्यान्वेषण करें, सत्य के साथ खड़े हों, और जो जितना अच्छा कर सके उतना अच्छा करें। हम तो नहीं कहते कि आप बिल्कुल, क्योंकि हमारे ग्रंथ भी हमें समझाते हैं सत्यम ब्रियात प्रियम ब्रियात ना ब्रियात सत्यम प्रियम। कई बार हम बड़े जुनूनी हो जाते हैं, उसका भी नुकसान है। जैसे मैं कहता हूं कि मैं आदरणीय ज्योति जी की कड़ी निंदा करता हूं, ऐसा कहता हूं, और मैं कहता हूं ज्योति जी मैं इस काम के लिए आपकी प्रशंसा नहीं कर पाऊंगा। शब्द को थोड़ा बदल सकते हैं, भाषा में कर्कशता लाने की जरूरत नहीं है, बड़े अच्छे शब्दों में भी बहुत अच्छी बात कही जा सकती है। इसलिए भाषा का समाज में तनाव नहीं पैदा करना, समाज में लठ नहीं चलवाने, समाज में तनाव नहीं पैदा करना, हमारे संवाद से तनाव पैदा हो जाए अच्छा नहीं है। आज क्या है, हमारा हाइपर टेंशन बढ़ जाता है लोगों का, टीवी की डिबेट देख करके लोगों को खुद की तबीयत खराब होने लगती है, ये ठीक नहीं। इसलिए पत्रकारों को पहली सलाह को एक तो राजयोग करें, और दूसरी सलाह थोड़ा सा हर घंटे एकांत में बैठें और थोड़ा एक दो मिनट अपने को रिलैक्स करें, उससे जो उनका तनाव है वो कम होगा। और जब वो घर लौटेंगे तो घर में भी पिता लौटेगा, पति लौटेगा, भाई लौटेगा, बहन लौटेगी, घर पर संपादक नहीं लौटेगा, घर पर पत्रकार नहीं लौटेगा, और जो समाज का तनाव वो घर लेके नहीं आएगा। सबसे बड़ा फायदा इसका ये है। आमतौर पर क्या होता है कि दुनिया में तो हम बड़े दिनायतदार, बड़े ईमानदार, बड़े सज्जन, बड़े सरल, बड़े सहज, और घर में आते हैं तो घर संपादक लौटता है। घर संपादक को नहीं लौटना चाहिए, घर रिपोर्टर को नहीं लौटना चाहिए, घर एक पिता को लौटना चाहिए, घर एक पति को लौटना चाहिए, घर एक पत्नी को लौटना चाहिए, घर एक भाई को लौटना चाहिए। और जब घर आप आएंगे तो आप रिलैक्स रहेंगे, क्योंकि आपने अपने काम को अपनी ईमानदारी से अंजाम दिया, किसी प्रकार का तनाव लेके आप घर नहीं लौटे, इसलिए घर के लोग भी अच्छा महसूस करेंगे कि कोई भला आदमी घर में आया।
तो अपने लिए भी कुछ नैतिक जिम्मेदारियां होनी चाहिए, खुद के साथ बैठें और आत्मचिंतन करें, आत्ममंथन करें। यदि पत्रकारिता नैतिक रूप से की जाए तो कुछ ना कुछ इसको समाज को इसका लाभ जरूर मिलेगा, तो किस तरीके के लाभ हो सकते हैं समाज के लिए?
देखिए, समाज का सर्वांगीण विकास होगा, सर्वांगीण विकास होगा। एक अच्छे समाज में, एक सुसंपादित समाज में, एक अच्छे संचार के समाज में ही अच्छे गुण विकास करते हैं। आप ध्यान रखिए, जब हम अच्छे संदेशों के साथ रहते हैं, सुमंगल का विचार करते हैं, लोक मंगल का विचार करते हैं, तो समाज में तनाव कम करते हैं। मीडिया का काम क्या है? समाज में तनाव कम करना। मैं आपको कोरोना पीरियड की याद दिलाता हूं। तमाम ऐसे लोग थे जो बता रहे थे दुनिया समाप्त होने वाली है, सब कुछ बचेगा नहीं। अरे तू तो बचेगा भाई, माइक लेके शांत रख, ठंड रख थोड़ा सा। हमारा काम समाज को दुखों में संबल देना है, उनके आंसू पोंछना है। सब कुछ समाप्त नहीं होता, हमें समाज को आतंकित नहीं करना, हमको भय का व्यापार नहीं करना है, हमको समाज को संबल देना है। हमें ठीक है, दुनिया का कोई समाज दुखों से मुक्त नहीं है, ध्यान रखिए आप। हर समाज के कुछ कष्ट हैं, बेरोजगारी होगी, हिंसा होगी, थोड़ा बहुत कुछ गरीबी होगी, कुछ अशिक्षा होगी, हर समाज में कुछ ना कुछ संकट, गैर बराबरी होगी, हर समाज में कुछ ना कुछ संकट होते हैं। उन संकटों के गीत गाते रहना या समाज को संबल दिलाना कि हम इन संकटों से मुक्ति पाएंगे, कुछ लक्ष्य तय करना कि जैसे भी माननीय प्रधानमंत्री ने तय किया कि 2047 तक भारत को विकसित बनाना है। अब ये सपना ड्रीम है, सपना है। हम ये भी कह सकते कुछ नहीं हो सकता भाई साहब, 47 नहीं 4047 आ जाए, देश ऐसे ही रहेगा, यहां के लोग ऐसे ही रहेंगे, कुछ नहीं हो सकता भाई। पर एक व्यक्ति कहता नहीं, हो सकता है, हम अपनी समस्याओं से लड़ सकते हैं, अपनी समस्याओं से जीत सकते हैं और भारत को अभाव से मुक्त बना सकते हैं। ये सपना है, सपना है। सपना जब देखोगे तभी तो उस पर काम करोगे। सपना सपना पूरा करने के लिए सिर्फ भाषण नहीं करना, फिर आगे बढ़ना, लोगों के घर मकान हो जाए, लोगों के पास कुछ काम करने को हो जाए, लोग कुछ काम करने लगे, लोग कुछ राष्ट्र के काम में कुछ कुछ योगदान देने लगे, अपना अपना व्यक्तिगत योगदान सुनिश्चित करने लगे, ये भाव देश के अंदर पैदा हो जाता, देश आगे बढ़ जाता। आखिर जापान की कहानियां हमने सुनी है, चीन की कहानियां हमने सुनी है, कोरिया की कहानियां हमने सुनी है, आखिर ये भी तो मुल्क है, ये भी तो अपने आधार पर आगे बढ़े हैं। आज हम 1.5 अरब लोग बैठे हुए, हम क्या नहीं कर सकते? दुनिया को श्रेष्ठतम मानव संसाधन देना, देश दुनिया को सुख शांति का संदेश देना हमारा काम है। पूर्व प्रधानमंत्री राजीव जी कहते थे कि हिंदुस्तान को आप किताबों से नहीं जान सकते, इसके लिए आपको नीचे उतरना पड़ेगा। भारत माता ग्राम वासिनी जिसको कह के दिनकर संबोधित करते हैं, आपको जाना पड़ेगा। कितने श्रमजीवी अपने जो है पसीने बहा रहे हैं खेतों में खलिहानों में, तब ये सस श्यामला भूमि इतनी सुंदर है। आप जाइए तो देखिए तो क्या हो रहा है दुनिया के अंदर, कितना जबरदस्त काम हमारे नौजवान कर रहे हैं। छोटे छोटे नौजवानों ने कम उम्र में 20-25 साल की उम्र में करोड़ों रुपए के स्टार्टअप खड़े किए, सर्विस इंडस्ट्री खड़ी कर दी, पूरी पूरी सेवा के काम कर रहे हैं। पर जब हम जानते हैं तो हमें लगता है कि नहीं कुछ हो रहा है, और जब आंखें बंद कर लेते हैं तो हम सिर्फ अवगुण 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 देखते हैं। इसलिए आप इस ध्यान रखिए, भगवान राम के समय में भी संकट थे, कृष्ण का समय भी संकटों से मुक्त नहीं था, पर वो संकटों से लड़े जूझे और उन्होंने एक धर्म सत्ता की स्थापना की। धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे, यही हमारा मंत्र, गीता का उद्देश्य है। हमें धर्म की स्थापना करनी है, अधर्मियों का विनाश करना, यह भारत की संस्कृति है। हम धर्म की स्थापना, हम हर कांड के बाद हर कर्म के बाद हम कहते हैं धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना, विश्व का कल्याण हो। दुनिया में कौन कहता है, कौन कहता है विश्व का कल्याण हो? सब अपनी अपनी कौम अपनी अपनी चीज को उसके कल्याण की कामना करते हैं। हम अकेले लोग हैं जो विश्व मंगल की बात करते हैं, जो लोक मंगल की बात करते हैं, जो अपने साथ सिर्फ मनुष्य को नहीं जोड़ते, पेड़ पर्वत नदियां पहाड़ पशु पक्षी सब हमारे साथ, ये सब लोक में आते हैं, हम उसके साथ खड़े होते हैं, प्रकृति के साथ हमारा एक संवाद रहा है। इसलिए हमें व्यापक दृष्टिकोण रखकर भारत को समझना पड़ेगा। इसलिए मैं अपने व्याख्यानों में कहता हूं, भारत को जानो, भारत को मानो, भारत के बनो, भारत को बनाओ। पत्रकार हो, डॉक्टर हो, मास्टर हो, इससे मतलब नहीं है, भारत को बनाना है। ये सारी यात्रा किस लिए है? ये व्यापार के लिए नहीं है। व्यापार तो है, हम तो व्यापार भी करते हैं तो उस नैतिक मूल्यों के आधार पर करते हैं, ठीक है, पत्रकारिता एक व्यवसाय है पर उसकी एक नैतिकता है। व्यापार भी व्यापार है, व्यापार की नहीं, हर चीज की नैतिकता होती है। नैतिकता सब जगह प्रारंभ में है, और जो नैतिक होता है वही विश्वसनीय होता है, वही क्रेडिबल होता है, और जमाना उसी को याद करता है। आप देखिए राजस्थान में कितने सेठ हुए होंगे, पर भामा शाह को देश नहीं भूला आज तक, क्योंकि भामा शाह ने अपनी तिजोरियां खोल दी राणा प्रताप के लिए, इसी अरावली की जमीन पर कहा कि ले जाओ जो तुम्हें ले जाना हो, युद्ध करो। इसलिए लोग दानवीरों को याद करते हैं, लोग सेठों को याद नहीं करते। तिजोरियां खोल दे जो अपनी, लोग पन्ना धाय को याद करते, बहुत साधारण सी महिला है, अपने पुत्र का बलिदान दे देती राष्ट्र की रक्षा के लिए। इसलिए हमें जो है नैतिक जो मूल्य अगर सीखना है तो हर छोटे से बड़े आदमी हमारे पास उदाहरण में, सामान्य लोगों ने भी त्याग किया, बड़े लोगों ने त्याग किया है, और इसलिए हमें अपने राष्ट्र को श्रेष्ठ बनाने के लिए राष्ट्र मंगल की भावना ध्यान में रखनी है। हम किस क्षेत्र में इससे मतलब नहीं है, पर हमारे पास एक बहुत जिम्मेदारी का काम है, कलम के माध्यम से, अपनी कलम के माध्यम से इस देश को जोड़ने का काम, समाज को जोड़ने का काम, दिलों को जोड़ने का काम। जो अटल जी कहते हैं ना, एक नहीं सशक्त मानव के हृदय जीतने का निश्चय, लोगों के दिलों को जीतने की संस्कृति है ये, इसलिए दुनिया के अंदर प्रारंभ है। इसलिए तमाम जो संस्कृतियां थी नष्ट हो गई, पर कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी, उस हस्ती को बचाए और बनाए रखने की जिम्मेदारी भी हमारी है कि हमें लगातार याद दिलाते रहना कि हम किसके बेटे हैं। हम शिवाजी के पुत्र हैं, हम राणा प्रताप के बेटे हैं, हम गोस्वामी तुलसीदास की संतानें हैं, हम गुरु नानक की संतानें हैं, हम गौतम बुद्ध की संतानें हैं। ये संवेदना हमको हमेशा लोगों को बतानी पड़ेगी, क्योंकि हम भूल जाते हैं कई बार हम क्या हैं, हम भूल जाते हैं। इसलिए राष्ट्र का भी हमें याद दिलाते हैं वैतेश्वर गुप्त, हम कौन थे, क्या हैं, क्या होंगे, अभी आओ मिलकर विचारें हम समस्याएं सभी। भारत भारती में कहते आह्वान करते देश के लोगों का, और आपने देखा कि राष्ट्रकवि का सपना पूरा होता है, 1947 में देश आजाद हो जाता है। तो सपना देखना पड़ता है, जो हम सपने देखते हैं तो पूरे जरूर होते हैं, और विकसित भारत का सपना जो हम 1947 के लिए देख रहे हैं 2047 के लिए, वो जरूर पूरा होगा, क्योंकि अगर सपना देखा है भारत के लोगों ने देखा है, उस स्वप्न को पूरा किया है। और हर आसुरी सत्ता का दमन हमने किया, रावण का भी अंत हुआ, एक लखपूत सवा दस लख नाती ता रावण घर दिया नबाती। जो अहंकारी सत्ताएं उनका विनाश होगा और जो समाज को मंगल करने वाली संस्थाएं हैं उनका वो रामराज्य आएगा, कोई रोक नहीं सकता। हम साथ चलेंगे, मिलकर चलेंगे, जल्दी आएगा, नहीं साथ चलेंगे थोड़ी देर में आएगा, आएगा क्योंकि ईश्वरीय राज की स्थापना होनी है। हमारे प्रयासों से थोड़ा वो जल्दी संभव हो सकता, हम प्रयास नहीं करेंगे थोड़ा देर से होगा, क्योंकि ईश्वरीय कार्य है, तय है ईश्वरीय कार्य, भारत को ही दुनिया को रास्ता दिखाना है और वो हम करके रहेंगे।
तो ये ईश्वरीय कार्य है तो हमें समस्याओं पे नहीं समाधान पे ध्यान देना है, बाबा भी यही कहते हैं, और कारण नहीं निवारण करना है, और सपने देखने हैं लेकिन सपनों को एक्शन में भी लेकर आना है। जैसे कि हम कहते हैं कि पत्रकारिता को नियंत्रित करने के लिए कोई सेंसरशिप हो या कोई कानूनी उपाय हो या सेल्फ रेगुलेशन, इस तरह में से कौन सा तरीका जो है वो पत्रकारिता, जिम्मेदार पत्रकारिता को या नैतिक पत्रकारिता के लिए सही रहे?
देखिए, मुझे लगता है कि नियमन बहुत अच्छी व्यवस्था है कि हम खुद अपने डॉक्टर बने। हम व्याधियों के लिए डॉक्टर के पास जाते हैं और डॉक्टर बीमार करके भेजता है। कानून बनने से बहुत खतरा है क्योंकि हिंदुस्तान के लोग सेंसरशिप को लेकर बड़े एलर्जिक हैं, क्योंकि हमने 75 में एक सेंसरशिप देखी और भुगती। पर क्या होता है कि कई बार मनुष्य बिना डंडे के सुधरता नहीं है। मैं आपको उदाहरण देता हूं, हिंदुस्तानी कैसा है। अब हिंदुस्तानी स्कूटर से जा रहा है, वो पुरुष स्त्री में इसमें पड़ता नहीं, विवाद की बातें हैं। वो स्कूटर से जा रहे हैं अपनी, लाल बत्ती हो गई डोगरा साहब, लाल बत्ती हो गई, गाड़ी बढ़ गई डोगरा साहब की या द्विवेदी साहब की। पुलिस वाले ने रोका, अरे रुकिए रुकिए कहां जा रहे हैं, देख नहीं रहे लाल बत्ती है। बोले हमने लाल बत्ती तो देखा पर आपको नहीं देखा। इस तरह हम कानून का पालन करते हैं क्योंकि जान जान नर करे ढिठाई, हम जान करके करते, हमें पता है डू एंड डोंट्स क्या है। हमारी इन महान संस्थाओं का समय आपको सुधारने में लगा हुआ है, आप भी जानते हैं आपको क्या करना है। आप अपना व्यवहार देखिए, आपका रोडवेज पर क्या व्यवहार है, खिड़की खोलते हैं थूक देते हैं बाहर। आपका रेलवे स्टेशन पर क्या व्यवहार है, आपका हवाई अड्डे पर क्या व्यवहार है। एक ही हिंदुस्तानी है, वो बस अड्डे पर अलग व्यवहार करता है, रेलवे स्टेशन पर अलग व्यवहार करता है और रेलवे स्टेशन पर अलग व्यवहार करता है, अपने मोहल्ले में अलग व्यवहार करता है और आबू में आके अलग व्यवहार करता है। यहां लगता है ऐसे देवतुल्य प्रतिमाएं बैठी हुई है। तो ये भी चीज है कि हमें पता है डू एंड डोंट्स पता है, हमें पता है हमें क्या करना क्या नहीं करना, पर हम क्योंकि हिंदुस्तानी लोग हैं कानून से मानते हैं तो कई बार लगता है कि जिस तरह की चीजें हो रही हैं उसमें कानून भी आवश्यक है, क्योंकि कानून का ऐसा डर है फिर हिंदुस्तानी मान जाता है। जैसे आप देखेंगे हिंदुस्तानी जब दुबई चला जाएगा, अभी रात चला जाएगा ब्रिटेन, बिल्कुल कानून मानता है। बिल्कुल दुनिया में सबसे ज्यादा हिंदुस्तानी पासपोर्ट की इज्जत इसलिए है, हिंदुस्तान का आदमी उस देश में जाकर उस देश के कानून को मानता है, जैसा देश वैसा वेश करता है। जो गड़बड़ करेगा हिंदुस्तान में करेगा, बाहर जाके कोई गड़बड़ नहीं करेगा, हिंदुस्तानी की गारंटी है, उसको पता है क्या करना। इसलिए मुझे लगता है कई बार सरकारें जो प्रयास कर रही कानून लाने का, उनको लाना ही पड़ेगा कि हम लोग आसानी सुधरने वाले लोग नहीं, हम जानते हैं हम क्या है, सबसे आगे होंगे हिंदुस्तानी, गड़बड़ करने में भी अच्छा करने में भी। अगर हमें लगा कि दंड हो जाएगा तो हम बिल्कुल सही चलेंगे, और दंड नहीं है, मेरे मन को भाया, मैंने कुत्ता काट के खाया, जगीरा डाकू बन जाएंगे फिर। थैंक यू।
आप बस आखिरी में कि निष्कर्ष के रूप में क्या संदेश देना चाहेंगे?
निष्कर्ष यही है कि आप इतनी अच्छी जगह पे आए हैं तो जैसे आए थे वैसे न जाएं, कुछ बदल के जाएं, कुछ बदलने के लिए जाएं, कुछ बदल के जाना और कुछ बदलने के लिए जाना, और करने से होता है। बाबा रामदेव कहते हैं करने से होता है, और हमारे बाबा भी ये कहते हैं करने से होता है। आखिर आप देखिए, एक व्यक्ति जो जला वतन है, जिसका अपना वतन नहीं है, जिसने पार्टीशन के बाद हिंदुस्तान में आए और इतनी बड़ी सुंदर रचना खड़ी, देवियों को आगे करके उन्होंने कितनी सुंदर रचना खड़ी की है, पूरी दुनिया में इतना बड़ा संगठन देवियों का कोई नहीं है, बिल्कुल ईश्वरीय व्यवस्था है। सारी व्यवस्थाएं स्त्रियों को सौंप दी, भगवान ने सौंपी है, लक्ष्मी को फाइनेंस भगवान ने सौंपी है, दुर्गा और काली को रक्षा मंत्रालय और शिक्षा मंत्रालय सौंप दिया, सरस्वती को, भगवान की व्यवस्था के अनुसार ही ईश्वरीय व्यवस्था चल रही है। और ये ईश्वरीय व्यवस्था हमारे मनों में, हमारे दिलों में जगह बनाए, समाज में जगह बनाए, जितनी जल्दी संभव होगा हम बदलाव होता हुआ देखेंगे और अपनी आंखों के सामने भारत को जगतगुरु बनता हुआ देखें, यही बाबा का स्वप्न, यही हम सबका स्वप्न है।
थैंक यू संजय भाई, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। ओम शांति।
बहुत बहुत तहे दिल से धन्यवाद, शुक्रिया आदरणीय भ्राता संजय द्विवेदी जी का और हमारी बहन ज्योति बहन का, बहुत बहुत धन्यवाद। बहनों से अनुरोध है, सौगात देकर सम्मानित करें। हमारे नेक्स्ट सेशन के लिए मैं आमंत्रित करूंगी आदरणीय भ्राता कोमल भाई जी को, जो हमारा नेक्स्ट वन टू वन टॉक सेशन नंबर 3 एंकर करेंगे। और हमारे जो गेस्ट ऑफ ऑनर
हैं, हिंदुस्तानी लोग हैं, कानून से मानते हैं, तो कई बार लगता है कि जिस तरह की चीजें हो रही हैं उसमें कानून भी आवश्यक है, क्योंकि कानून का ऐसा डर है फिर हिंदुस्तानी मान जाता है। जैसे आप देखेंगे हिंदुस्तानी जब दुबई चला जाएगा, अभी रात चला जाएगा ब्रिटेन, बिल्कुल कानून मानता है। बिल्कुल दुनिया में सबसे ज्यादा हिंदुस्तानी पासपोर्ट की इज्जत इसलिए है, हिंदुस्तान का आदमी उस देश में जाकर उस देश के कानून को मानता है, जैसा देश वैसा वेश करता है, जो गड़बड़ करेगा हिंदुस्तान में करेगा, बाहर जाके कोई गड़बड़ नहीं करेगा, हिंदुस्तानी की गारंटी है, उसको पता है क्या करना। इसलिए मुझे लगता है कई बार सरकारें जो प्रयास कर रही कानून लाने का, उनको लाना ही पड़ेगा, क्योंकि हम लोग आसानी सुधरने वाले लोग नहीं, हम जानते हैं हम क्या है, सबसे आगे होंगे हिंदुस्तानी, गड़बड़ करने में भी अच्छा करने में भी। अगर हमें लगा कि दंड हो जाएगा तो हम बिल्कुल सही चलेंगे, और दंड नहीं है, मेरे मन को भाया, मैंने कुत्ता काट के खाया, जगीरा डाकू बन जाएंगे फिर। थैंक यू।
आप बस आखिरी में कि निष्कर्ष के रूप में क्या संदेश देना चाहेंगे?
निष्कर्ष यही है कि आप इतनी अच्छी जगह पे आए हैं तो जैसे आए थे वैसे न जाएं, कुछ बदल के जाएं, कुछ बदलने के लिए जाएं, कुछ बदल के जाना और कुछ बदलने के लिए जाना, और करने से होता है। बाबा रामदेव कहते हैं करने से होता है, और हमारे बाबा भी ये कहते हैं करने से होता है। आखिर आप देखिए, एक व्यक्ति जो जला वतन, इसका अपना वतन नहीं है, जिसने पार्टीशन के बाद हिंदुस्तान में आए और इतनी बड़ी सुंदर रचना खड़ी, देवियों को आगे करके उन्होंने कितनी सुंदर रचना खड़ी की है, पूरी दुनिया में इतना बड़ा संगठन देवियों का कोई नहीं है, बिल्कुल ईश्वरीय व्यवस्था है, सारी व्यवस्थाएं स्त्रियों को सौंप दी, भगवान ने सौंपी है, लक्ष्मी को फाइनेंस भगवान ने सौंपी है, दुर्गा और काली को रक्षा मंत्रालय, और शिक्षा मंत्रालय सौंप दिया सरस्वती को, भगवान की व्यवस्था के अनुसार ही ये ईश्वरीय व्यवस्था चल रही है। और ये ईश्वरीय व्यवस्था हमारे मनों में, हमारे दिलों में जगह बनाए, समाज में जगह बनाए, जितनी जल्दी संभव होगा हम बदलाव होता हुआ देखेंगे, और अपनी आंखों के सामने भारत को जगत गुरु बनता हुआ देखें, यही बाबा का स्वप्न, यही हम सबका स्वप्न है।
थैंक यू संजय भाई, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। ओम शांति।
बहुत बहुत तहे दिल से धन्यवाद, शुक्रिया आदरणीय भ्राता संजय द्विवेदी जी का और हमारी बहन ज्योति बहन का, बहुत बहुत धन्यवाद। बहनों से अनुरोध है, सौगात देकर सम्मानित करें।